Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ پہ ایسے لگ رہا تھا کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں. یہ بتائیں کہ جب تلاوت سنتے ہیں تو زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں یا خود پڑھ کے زیادہ فوکسڈ ہوئے ہیں؟ اپنی تلاوت خود نہیں اچھی لگی؟ چلیے ویسے اب ضرورت نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا وہ جس کو کرنا چاہیے ریلیکسیشن دینے کے لیے ہم شروع کی جہاں تک حضرت موسیٰ کا قصہ شاید آیت 16 یہاں تک تلاوت پلے کریں. ٹھیک ہے اب آپ اس میں تفسیر کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. آج چونکہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن موجود ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹ تفسیر کریں گے لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے والا حصہ ساتھ لیں گے. یہ تلاوت جو آپ کو سنائی جا رہی ہے یہ آپ کو اس وقت ایک قسم کا اسٹریچ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی آن لائن پہ بھی امید ہے کہ آواز ٹھیک ہوگی.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Thank you.
الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ہی اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی باتیں پیچھے سے, کیونکہ سورۃ الحمدللہ پوری ہو گئی, لیکن ایک تو آخری مضمون سورت کے نام کے ناطے سے خاص طور پہ سورت شعرا ہے, تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام شاعری کے بارے میں کیا کہتا ہے. اشارے تو ہو گئے, لیکن اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو سوالات ذہنوں میں ابھرتے ہیں ان کے ناطے سے کیا. تو چھوٹے چھوٹے سینٹنسز کی صورت میں اسلام میں شاعری کے بارے میں کیا ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری یا پوئٹری کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاعری اپنی اصل کے اعتبار سے نہ اچھی ہے نہ بری ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں کلام میں, ایک ہوتی ہے شاعری اور ایک ہوتی ہے نثر, پوئٹری اینڈ پروز. پوئٹری ہو یا پروز ہو, اگر اس کا ٹاپک برا ہے اور بے حیائی کی باتیں ہیں اس میں, تو جو مقام شاعری کا ہے وہی ایسی ولگر ٹاک کا بھی ہوگا. ہاں, اصل میں ان آیات میں جو بات بتائے گی وہ کیا ہے کہ پوئٹری کا اثر دل پہ نثر کی نسبت زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ اثر قرآن کے اثر سے بڑھنے لگے تو پسندیدہ نہیں ہے. مثال دیتی ہوں کہ اب کوئی قرآن کی تلاوت کی بجائے ہر وقت نشید ہی سنتا رہے, اسلامک نشید ہی کیوں نہ ہو, یہ پسندیدہ نہیں ہے. انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے مائل ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر, لیکن شروع میں کسی کو شوق دلانے کے لیے چلیے گانے سنتا تھا, تو اب آپ اس کو پوئٹری لگا دیں, کلام اقبال لگا دیں, کوئی رائمز لگا دیے, کوئی انگلش کی عربی کی اچھی ٹیون کی لگا دی, اٹس اوکے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بریکس میں ہم لوگ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں. اس میں بھی میرا تو بہت سخت ہوتا ہے نقطہ نظر, لیکن سم ٹائم کچھ ایسی چیزیں چل جاتی ہیں جو میں ہوں تو میں نہ چلاؤں, لیکن الحمدللہ کبھی کوئی ایسی الفاظ جس میں ہوں جو پسندیدہ نہیں ہے تو اس کو پھر ہم منع کر دیتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت لوگ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ان کو فاسٹ کرنا مقصود بھی ہوتا ہے, یہاں آپ لوگ کم لگاتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں اسی لیے آپ لوگوں کی بریک لمبی ہو جاتی ہے. ہم ناروے میں یہی کرتے تھے, ابھی پتہ نہیں مجھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پورے 20 منٹ کی ایک فائل بنائی ہوتی تھی, کلپس ڈالتے جاتے ہو جاتی, کوئی مشکل نہیں ہے, تو وہ آٹومیٹکلی بریک کے شروع پہ چلتی تھی اور اس فائل کے آخر میں ہم نے سب اسٹوڈینٹس کو بتایا ہوا کہ اسماء الحسنیٰ چل جائے تو پتہ آپ کو کہ 3 منٹ رہ گئے, کیونکہ وہ پورے رہ ہو جائیں گے. اس کے بعد 2 منٹ دعائے نور, اس سے اور الرٹ ہو جاتے ہیں, 2 منٹ 5 منٹ ہو گئے, اور اس کے بعد لگ بھائی 1.5 منٹ کا. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اسماء الحسنیٰ سنتے ہی اسٹوڈینٹ فارغ ہو کے فوراً سمجھتے ہیں کہ اب ختم ہو رہا ہے, ریپ اپ کیا, دعائے نور چلی, اس کے دوران وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور لبیک کے ساتھ ہی کلاس شروع ہونے کی امید ہوتی ہے. تو یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ جس کو ہم ایک موقع کی مناسبت سے استعمال کرتے ہیں. بچوں کی پارٹیز ہیں, کوئی ہلا گلا ہے, کوئی خوشی کا موقع ہے, اب آپ کہتے ہیں گانے نہ سنیں, میوزک نہ چلائیں, اس طرح کی چیزیں اٹس اوکے, جس کے اندر سب چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن کیونکہ ایسے وقتوں میں تلاوت چلانا اصل میں تلاوت کی ایک قسم کی توہین کرنا ہے, کیونکہ لوگ باتیں کرنا چاہتے ہیں اور تلاوت کا ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ پھر اس کے بعد دوپٹہ بھی سامنے, اور بعض دفعہ تو لوگ اتنا زیادہ افینڈ ہو جاتے ہیں تلاوت سن کے کہ کہتے ہیں کہ جس کو بند کر دیجئے کیونکہ ہم باتیں کر رہے ہیں اور یہ تو حرام ہے, لائک دس. ادر وائز جو شاعری جس میں جھوٹ ہو, فکشن ہو, عام طور پہ بھی دیکھیے اگر ان ساری چیزوں کو آپ شاعری لفظ پہ رکھے نا, تو گانا وداؤٹ میوزک آپ کہہ رہے ہیں. میوزک کے بارے میں بات سورہ لقمان میں ہو سکتی ہے, اس لیے ہم اس وقت میوزک کو نہیں چھیڑ رہے. ہم اس وقت گانوں کے بول, شاعری کے بول, غزلیں, محفل غزلیات, اس کا اسلام میں کیا حکم ہے. تو دیکھیے, ناجائز محبت تو ناجائز ہی ہوتی ہے. وہی شعر شوہر اپنی بیوی کے لیے کہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر ایک ان میرڈ لڑکی ایک ان میرڈ لڑکے کے لیے کہتی ہے تو وہ غلط ہے. بعض چیزیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں لیکن وہ کسی غلط جگہ ہے. ویسے ایک بات ایک مرد ایک عورت سے کرتا ہے اور وہ عورت اس کی بیوی ہے تو وہ بات اچھی ہے, اور وہی بات وہ اپنی بہن یا ماں سے کرے گا تو اچھی نہیں ہے. تو بعض دفعہ کلام ٹھیک ہوتا ہے, جس کے لیے کہا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. شادی کے گانے ٹپے, اب آپ دیکھیے وہ بھی کیا لگتا ہے آپ کا, جس کا نام دونوں کے جوڑ کے دونوں سسرالی رشتے داروں کو آپ ایک دوسرے کو گانوں میں عجیب و غریب سے نام دیتے ہیں, اس میں مذاق بھی ہوتا ہے, ٹھٹھا بھی ہوتا ہے, لڑکی کو ذہنی طور پہ تیار بھی کر دیتے ہیں کہ ایک بڑی ہونہار قسم کی ساس اور بڑی درندہ صرف قسم کی نندے تمہارے انتظار میں. تو اس طرح کی نفرتوں والی چیزوں میں وہ کہاں سے محبت لے کر آئے گی, اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور یقین کریں کہ ایمان کا ایک اثر ہے کہ پھر آپ کا گانے میں دل نہیں لگے گا. قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن کی طرف آنے کے بعد جو سب سے مشکل چیز میں نے دیکھا ہے، خاص طور پہ ینگسٹرز کو لگتی ہے، وہ گانا چھوڑنا. اس کی جگہ اگر آپ اچھی چیزیں کریں اور آپ دیکھیں کہ اس میں الفاظ کے الغابون، شاعروں کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا میں بھٹکی ہوئی ہوں؟ بات دیکھیے کہ عموماً جب بھی آپ کہیں بھی پوئٹری یا میوزک اور ایسی چیزیں دیکھیں گے تو آپ کے ذہنوں میں کیا چیزیں آئیں گی؟ شہوانیت، لسٹ، مسخرہ پن، حج، بے جا مبالغہ قسم کی تعریف، کہیں کسی کے خلاف نفرت، عداوت. عربوں میں تو اتنا رواج تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑا دیا جاتا تھا شعروں کے ذریعے. عورتیں ان کے ساتھ جنگوں میں صرف اس لیے جاتی تھی کہ وہ شعر پڑھ پڑھ کے، جس کو آپ قومی ترانے کہہ لیں یا جہادی نظمیں کہہ لیں، وہ دوسروں کو اس طرح سے مائل کرتی تھیں، غیرت کی باتیں کرتی تھیں. بڑے گندے شعر ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں جب سیرت پڑھتے ہیں، کہ جب وہ عورتیں مسلمانوں کے خلاف اپنے لوگوں کو پکارتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ آج تم میں سے جو جائے گا وہ حاضری کے جوہر دکھائے گا، پھر ہم اس کو گلے سے لگائیں گی، ہم اس کو شراب پلائیں گی. اس طرح کی باتیں سن کے وہ بے بس ہو جاتے تھے، تو اس لیے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. عموماً آپ دیکھیں جو بھی لوگ اس قسم کے ہائی میوزک یا آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں فکشن میں، تو آپ دیکھیں اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، جذبات میں بھٹک کے کچھ بھی کر دیتے ہیں، کبھی لطف اور لذت کے پرستار بن جاتے ہیں. نیم حیوانیت قسم کی چیز ان کے دلوں میں آ جاتی ہے. اور عموماً دیکھیے گا ایسے لوگوں کی زندگی کا کوئی بلند ترین مقصد نہیں ہوتا، بالکل ایک الگ سوچ ہے. ایک بندہ جو اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا گول لے کے بیٹھتا ہے، اس کو تو یہ باتیں بڑی چھوٹی لگتی ہیں. اسی لیے آپ نوٹ کریں گے کہ 18 سے 20-25 سال کی عمر میں جو لڑکے ہوتے ہیں، اگر تو آپ ان کو شروع سے کوئی گول دے دیں، کاروبار میں لگ گئے یا کوئی پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے، تو وہ ان فلموں اور گانوں میں نہیں جاتے. جو ینگ لڑکے اس عمر میں ریلیکس چھوڑ دیے جاتے ہیں، طرف پڑھائی میں توجہ نہیں، پھر آہستہ آہستہ رات کو دوستوں کے ساتھ نکلنا، پھر گاڑیوں میں میوزک سننا، اور پھر لڑکیوں کے پیچھے لگ جانا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے ذرا سے انکلائنیشن بھی اگر کسی میں عمر کے لیے آتے ہیں، عمر کے تحت جو ہی وہ بچے مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی. ٹی وی تو کھولنا دور کی بات ہے، وہ ہوش ہی نہیں، کیونکہ ان کا دماغ ہر وقت مصروف ہوتا ہے. تو ذہنی طور پہ جب مصروفیت دے دی جائے کسی کو، تو اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ کیا ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام، جو صحابیات بھی اشعار کہتی تھی، یا ان کا اشعار کے بارے میں کیا معاملہ تھا؟ چند روایتیں پڑھ کے سنا دیتی ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ نظریہ کلیئر ہو جائے گا. کیونکہ جب یہ آیت اتری تھی تو چند صحابی، جس میں عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت اور کعب بن مالک، یہ تینوں شعرا کے نام سے معروف تھے، شعر کہتے تھے، یہ تینوں روتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خدا ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور شعر تو ہم بھی کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آیت کے آخری حصے کو پڑھو، مقصد یہ تھا کہ تمہارے اشعار بیہودہ اور غلط مقصد کے لیے نہ ہوتے، اس لیے تم اس استثناء میں داخل ہو، یعنی تم اس میں شامل نہیں ہو. مفسرین کہتے ہیں کہ اس ابتدائی آیت میں مشرکین شعرا مراد ہیں، کیونکہ گمراہ لوگ، سرکش شیطان اور نافرمان جن انہی کے اشعار کی اتباع کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں. رہ گئے اسلام میں ہمارے بارے میں اس میں کیا حکم ہے، روایت سن لیجیے. عبی بن کعب کی روایت ہے، فرمائے ان من الشعر حکمہ، بعض شعر حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. کبھی آپ کو کوئی شعر سنایا جائے، خاص طور پہ جب علامہ اقبال کے، تو پی کے ایسے نہیں لگتے، اس کو پڑھنے سے ایسے نہیں فیل ہوتا کہ یہ بات تو ہمیں 2 گھنٹے میں نہیں سمجھ آنی تھی، تو اسے ایک شعر سے آ گئی ہے. تو یہ حکمت کی اشعار ہوتے ہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد سچی بات ہے جو حق کے مطابق ہو. ابن بطال نے فرمایا، جس شعر میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا ذکر، اسلام سے الفت کا بیان ہو، وہ ایسے نہیں کریں، بس اس کو ہاتھ سے کہیں ایسے چپ، عبداللہ ایسے تھوڑا اس کو اپنے ایکشن سے بتائیں جی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو جس میں اسلام سے محبت کا ذکر ہو، وہ شعر مرغوب اور محمود ہے. اور ایسا ہی شعر اچھا ہوتا ہے، برا شعر وہ ہوتا ہے جو فحش بیان ہو اور جس میں غلط باتیں ہوں. عمر بن سرید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے امیہ بن ابی سلد کے 100 قافیے تک اشعار سنے. امیہ بن سلد دور جاہلیت کا ایک بڑا معروف شاعر تھا. تو کسی موقع پہ اللہ کے نبی نے کسی سے کہا بھی سناؤ، اور اللہ کے نبی حقیقت میں لوگوں کو کمپنی دیتے تھے، سیکھنے کے لیے بھی سنتے ہوں گے. بہرحال پھر اسی طرح مطرف کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بصرہ تک حضرت عمران بن حسین کے ساتھ سفر کیا، اور وہ ہر منزل پر شعر سناتے تھے، یعنی جہاں سٹاپ اوور کرتے تھے وہاں شعر سناتے تھے. तबरी ने कुबार सहाबा और कुबार ताबेईन के बारे में कहा कि वो शेर कहते थे, सुनते थे और सुनाते थे। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हजरत आयशा शेर कहा करती थी। अबू याला ने इब्ने उमर से रिवायत किया कि शेर एक कलाम है, अगर इसका मजमून अच्छा और मुफीद है तो शेर अच्छा है, और मजमून बुरा या गुनाह का है तो शेर बुरा है। ये फतहुल बारी की रिवायत है जो इमाम बुखारी की किताब पर शरह है। फिर इसके बाद आप देखिए कि तफसीर कुर्तुबी में है कि मदीना मुनव्वरा के फुकहाए अशरा यानी 10 बड़े फकीह जो थे जो अपने इल्म फजल में मारूफ हैं, इनमें तो वैदिल्ला बिन उत्बा बिन मसूद मशहूर कादिर कलाम शायर थे और काजी जुबैर बिन बकार के एक शेर अशार एक मुस्तकिल किताब में जमा है। किस्सा मकसद यह है कि सारी बात का खुलासा मेरे हाल बात समझ आ गई है कि शेर और शायरी की मजम्मत क्यों है, क्योंकि शेर में इतना मसरूफ और मुनहमिक हो जाए कि जिक्र अल्लाह इबादत और कुरान से गाफिल हो जाए। आप ये चीज मानते हैं? जो लोग इन चीजों में पड़े होते हैं, मिसाल है कि कोई ऐसी फिल्म देख रहा है या कोई ऐसी चीजों में मगन है, महफिल में बैठे, उस वक्त उनको नमाज पढ़नी होश नहीं रहेगी, कुरान अच्छा नहीं लगेगा। इमाम बुखारी ने इस पर एक मुस्तकिल बाब बांधा है जिसमें हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, कोई शख्स पीप से अपना पेट भर ले, ये इससे बेहतर है कि अशार से पेट भरे। यानी शेर याद नहीं होते, नहीं करने चाहिए, मुराद वही गलत अशार है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मेरे नजदीक इसके मानी ये हैं कि शेर जब जिक्र अल्लाह और कुरान और इल्म के इश्तगाल पर गालिब आ जाए और अगर शेर मगलूब है तो वो फिर बुरा नहीं। इसी तरह वो अशार जो फुखश मजामीन या लोगों पर तानो तशनी या दूसरे खिलाफ शरा मजामीन पर हों वो बजमाए उम्मत हराम और नाजायज है। और ये कुछ शेर के साथ मखसूस नहीं बल्कि नसर भी ऐसी ही होगी। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने गवर्नर अदी बिन नजला को इनके ओहदे से सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया कि वो फुखश अशार कहा करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अमर बिन रबिया और अबुल अहवस को इसी जुर्म में जिला वतन करने का हुक्म दिया। अमर बिन रबिया ने तौबा कर ली तो वो कबूल हो गई। अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान की इतनी मोहब्बत दे दे कि हमें किसी और चीज की होश न रहे। आप पता है कि अरबों के जो बड़े बड़े शायर थे उन्होंने अपना कलाम जला दिया था कि अब कुरान के बाद जरूरत नहीं रही। उस वक्त जब सूरत कौसर नाजिर हुई कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, जब ये कलाम उतरा लोगों को अच्छा लगा, इसको खाना काबा की दीवार पे लगा दिया तो एक शख्स था गालिबन लबीद उसका नाम था, जब उसने इसको पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, उसने उसके नीचे जाके एक चौथी चीज लिख दी, वल्लाहि माला हाज़ा कलामुल बशर, कसम खाता हूँ कि ये बशर का कलाम नहीं है। तो वो अहले लुगत थे और जैसे हीरे की एक पहचान जो वो जौहरी को होती है, तो लिहाजा उनको साफ पता था कि ये कुरान जो है ये शायरी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि लोगों को ऐसी चीजें छोड़नी मुश्किल लगती हैं। दुआ करें, वही दुआ जो आपको बताइए कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन हमज़िही व नफ़्ज़िही व नफ़्सिही। नमाज में बिल्कुल इब्तिदा में दुआ इस्तफ़्ताह के करीब भी इसको पढ़ सकते हैं और अपनी इस नियत से जब मर्जी सुबह शाम पढ़े दुआ करें, अपनी जुबान में कहें कि अल्लाह ताला मेरा इन चीजों से दिल भर जाए। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा हमारे कल्चर में बस स्टॉपों पर ट्रेन स्टेशनों पर कहीं कोई अच्छी बुक हो ना हो लेकिन पोइट्री की और फिक्शन की बुक बहुत है। आज भी अपने पे एक लफ्ज लिख के उर्दू की देखिए तो आपको वो होंगी, फिर उसमें जो जज्बात को भड़काने वाले रंग होते हैं और वो सारी मोहब्बत जो होती है वो अमूमन बगैर शादी की होती है, तो ऐसी चीजों को ना रखा जाए। बाकी मुजाहिदीन को शौक दिलाना उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब एक सवाल आखिरी करके आगे चलती हूँ कि भाई क्या मुल्क की या कौम की मोहब्बत में अशार गाए जा सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जिसको मिली नगमे और कौमी नगमे कहते हैं। आप सोचिए जरा इसको, जाहिद हूँ भी जिहादन कबीरा, अगर तो ये मोहब्बत भरे अशार और तराने वो लोग गाएं कि जो कुरान से जुड़े हुए जिनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ गई है, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और अगर ये सोचा जाए कि हाथों में गिटार और उसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर नाचते ड्रम बीटते हुए सुन्नत से खिलाफ चेहरों वाले लोग सिर्फ ऐसे तराने गाकर मुल्क को आजाद करा लें और उसको इज्जत दे दें, तो ये तो और भी लोगों को दूसरी तरफ ले जाने वाली बातें। तो अगर मोहब्बत है मुल्क और कौम की तो उससे ऊपर गालिब अल्लाह और उसकी मोहब्बत होनी चाहिए और अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक भी अता फरमाए। एक सवाल आप लोगों की तरफ से इधर है कि जब तमाम नबियों का पैगाम एक था तो इनकी शरीयतें क्यों मुख्तलिफ थी, तो इसका जवाब समझ लीजिए। देखिए ना सिर्फ ये कि तमाम नबियों का पैगाम एक था بلکہ حلال اور حرام بھی ایک تھا, فرائض اور سنت اور جو مستحبات ہیں وہ بھی ایک تھے, ماں سوائے چند چیزوں کے جو اس دور کی ضرورت تھی. بس آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دور ابتدائی دور تھا, تو اس دور میں ابھی انسانیت کو پروموٹ کرنا تھا, کہاں بچے ہوتے, کہاں شادیاں کی جاتی, دار آدم اور حوا ہی کے بطن سے بچے پیدا ہونے تھے. تو اس وقتی اثر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھائی اور بہن کا نکاح ایک خاص شرط کے ساتھ حلال کیا تھا. جب ضرورت پوری ہو گئی, تھوڑی سی فیملیز بڑھتی گئیں, تو اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اس تعظیمی سجدہ کرتے تھے. یہ وہ دور تھا کہ جس وقت لوگ اپنے بادشاہوں کو اور بڑے لوگوں کو سجدے کرتے تھے, یعنی اتنا زیادہ یہ ایک چیز سوسائٹی کے اندر آ چکی تھی کہ اس کو پھر وہ لوگ لے کر, یعنی اگر ایک دم اس کو نو کہہ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے. تو انسانیت کو یوز ٹو کرنے کے لیے ایسا کیا گیا. پھر ایک اور انہوں نے لکھا ہے کہ کیا خواتین کے گروپ میں کے ساتھ حج پر جا سکتی ہیں, تو میں تو کبھی بھی نہیں جاؤں گی, میرا یہی جواب ہے. باقی آپ کو اس پہ کوئی فتویٰ لینا ہو, کوئی بھی بات ہو, تو islamqa.com پہ جائیے, الحمدللہ بہت ڈیٹیل سے آپ کو پتہ چلے گا. یاد رکھیے کہ نیکیاں اللہ کے لیے کرنی ہے نا, تو اللہ ہی کے حکموں سے کرنی ہے. اختلافی مسئلہ ہے اس لیے میں کچھ نہیں بولتی, کوئی جاتا ہے تو آپ اس کو برا نہ کہیں, لیکن اپنے لیے ہمیشہ وہ کوشش کریں کہ اللہ ایسا کبھی کرے ہی نہ کہ ہم اکیلے ہوں. آپ کم از کم اپنے گھر کے ایک محرم مرد کو اس بہانے اپنے ساتھ تو لے جائیں گی نا کہ بھائی تم چلو, شوہر نہیں ہے, بیٹا, بھانجا, بھتیجا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے میٹھے رشتے دیے ہیں, تو آپ کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہو. ایک اور روایت سامنے آ گئی ہے اشعار کے بارے میں. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی کبھی اپنی تقریروں میں اشعار استعمال کرتے تھے. اب یاد بہت سارے مبلغین کا ہے نا مسئلہ, انہوں نے فرمایا شعر سے بڑھ کر آپ کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی, البتہ کبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے, مگر اول کو آخر اور آخر کا اول پڑھ جاتے تھے, پچھلا مسئلہ پہلے, بعد والا پہلے پڑھ دیتے تھے. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے, تو آپ فرماتے کہ بھائی میں شاعر نہیں ہوں, نہ شعر کوئی میرے کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو جس سے آرٹیفیشل فن آنے لگے نا, اسی سے پھر ایک اور بات دماغ میں آ گئی ہے, دعا کرانا, شعروں میں دعائیں کرنا, رونا اور رولانا, اور بعض لوگ پورے شعر پڑھتے ہیں, آ گیا تیرے در پہ, اور یہ اور وہ, جس چیز میں مبالغہ آ جائے, آرٹیفیشلنس آ جائے. ایک ہے جو خود آپ کے دل کی زبان بن کے آپ کی زبان پہ آ گیا, اور بات ہے, لیکن سوچنا, تیاری کرنا. مجھے کچھ محفلوں میں ایسے جانے کے اتفاق ہوا کہ لوگ بیٹھتے ہیں, سب پڑھتے پڑھاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس وہ ان کو ہم نے دعا کے لیے بلایا ہوا, درس والی باجیاں آئی ہیں, تو ان کی دعا سن لیں, پھر آپ کا درس شروع کراتے ہیں. اتنی دیر وہ باجی جو تھی وہ پرس میں سے ایک پرچہ نکالتی ہیں, پھر اپنے سامنے رکھتی ہیں, پوری لکھی ہوئی دعا ہوتی ہے شعروں کی صورت میں, اور بھی وہ دیکھ دیکھ کے پڑھتی اور جھومتی ہیں, اور لوگ روتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں. تو اللہ کے نبی کو تسنن پسند نہیں تھا. آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, کسی مجھے یاد نہیں, غالباً سورۃ النجم یا قمر, اسی دور کی صورتوں کی آخری صورتوں میں کہ وما انا من المتکلفین, میں تکلف نہیں کرتا. تو بھولے بھالے سیدھے سادھے طریقے سے غلط سیدھی بات جو بھی ہو جائے وہ چیز بہرحال بہتر ہے. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پوری صورت میں جو ہم نے پڑھا, جو سیکھا, اس کو ہماری زندگی میں ڈھال دے, اور حقیقت میں شاعروں, سوری, انبیاء کرام کے معاملے میں جو کچھ ہم نے ادھر دیکھا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل مستقلید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں کر دے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کے پیغام کو مانا, اور اس بھیڑ اور اس بڑی جماعت ہونے سے بچائے کہ جو نبیوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے رہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب ہم چلیں گے سورۃ نمل پہ, ایک ساتھ اس سورت کو ختم کر کے ابھی شروع کرنی, انشاءاللہ ہمیں اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں ذرا سورۃ نمل کو, پھر اس کے بعد آج کے سبق کو, اور پھر آیات کو. سورۃ نمل اگر آپ دیکھیں تو لفظ نمل, نملۃ ان کی جمع ہے, اور نمل کہتے ہیں چیونٹی کو, اینٹس کو کہتے ہیں. کیا شان ہے ایک چھوٹی سی چیونٹی کی کہ اس کے نام پر سورت ہے. کہ اس سے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے اس کارخانے میں کوئی مخلوق, کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. اس سورت میں دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں وادِ نمل کا ذکر ہے, اسی سے یہ نام ہے. اس پوری سورت کو اگر میں جو سمجھ سکی ہوں, میں نے اس کو بہت انجوائے کیا ہے, پوری شروع سے پڑھی, سنی, آگے سے بھی جاتے تلاوت, سب جو مجھے اس کو پڑھنے کے بعد فیلنگ آئی ہے نا, واللہ ہی اس کو پھر میں پیچھے جا کے دوں بھی جہادن کبیرہ سے جوڑوں گی. مسلمان دنیا میں کب کامیاب ہوں گے؟ اس صورت میں ہمیں بالکل آغاز میں بلکہ اسی میں آج کے سبق کا بھی خلاصہ ہو جائے گا کہ اس سبق کے شروع میں ہم سورت قرآن پاک کی حکمت اس کی مختلف خوبیوں کا تذکرہ دیکھیں گے کہ اگر آج کے دور میں مسلمانوں کو کامیاب ہونا ہے تو ان کے لیے سب سے بڑا ہتھیار قرآن ہے, اس کو عام کرنا ہوگا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے مشہور اور معروف رسول تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا جہاں مقابلہ فرعون سے تھا. بنیادی طور پہ یہاں موسیٰ کا قصہ فرعون کی ظلم اور اس کی بربریت کا ہے کہ ایک طرف فرعون جس کو اللہ نے دنیا میں تھوڑی سی دولت اور جدراہٹ دی تو اس نے اتنا زیادہ دنیا میں امن کو پامال کیا کہ علوان و ظلم ہم پڑھیں گے سورت میں اس کا ذکر. اس کے برعکس پھر آگے ہی اسی آج کے سبق کے دوسرے حصے میں ہم حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر پڑھنے والے ہیں. باضابطہ طور پر پہلی دفعہ قرآن پاک میں ان دو انبیاء کا ذکر آ رہا ہے, اور مقصد اس کے آنے کا کیا ہے کہ جب قرآن کی دولت کے بغیر دنیا کی دولت اور اتھارٹی اور غلبہ مل جاتا ہے تو لوگ فرعون بن جاتے ہیں, اور دینداروں کو, قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کو, قرآن کو سینوں میں اتارے ہوئے لوگوں کو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ اقتدار اور دولت دیتا ہے تو وہ پھر داؤد اور سلیمان بن جاتے ہیں. دوسری چیز آج کے سبق میں ہم بہت تفصیل سے دیکھیں گے کہ کیا مسلمان صرف دین کی تعلیم سیکھ کر دنیا کے نقشے میں رنگ بھر سکتے ہیں, جس کا جواب نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اگلی چیز اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا چناؤ بے لاگ ہے. دو کو راہ چلتے چننے کی باتیں ہیں اس سبق میں, ایک موسیٰ کو, پیچھے بھی بات ہوئی مدین سے مصر آتے ہوئے اچانک چنیں گے, اور دوسرا چناؤ ہے یہاں داؤد علیہ السلام کا. ایک ادنا سپاہی تھے تالوت کے لشکر میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے چنایا, انشاءاللہ آج ہم ان کے قصے کو انجوائے کریں گے. اور پھر اگلی چیز اس میں یہ ہے کہ جب اللہ دنیا میں آپ کو کوئی نعمت دے تو آپ کی زبان پر کیا دعائیں ہونی چاہیے. میرا لئے دی بیسٹ دعا آپ کو اس بارے کی یہاں آج دکھے گی, حالانکہ پیچھے بھی ہم نے دعائیں بہت خوبصورت دیکھی, اور خاص طور پہ یہاں یہ بھی دیکھیں گے کہ بادشاہت بھی ہو, دولت بھی ہو, حسن بھی ہو اور علم بھی ہو, تو اللہ اس میں سے علم کی دولت کو نعمت کہتا ہے. پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پرندے اپنی فطرت کے اعتبار سے مواحد ہے, توحید پہ ہیں. جانور بھی اللہ کو مانتے ہیں, اور خاص طور پہ یہاں چیونٹیوں کی بولیاں اور چیونٹیوں کی آرگنائزیشن کی بات دکھی. پورے سبق کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک لسٹ ہوگی. اگر آج کے دور میں مسلمان قرآن کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کریں, حضرت سلیمان کی طرح آرگنائز گروپ بن جائیں, ایک ایک پر نظر ہو, ایک ایک کو اس کا حق دیا جائے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کر چیزوں کو اپنایا جائے تو مسلمان انشاءاللہ آج کے دور میں بھی کامیاب ہوں گے. سورت نمل میں انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ باقی چیزیں دیکھتے رہیں گے. تھوڑی سی باتیں نوٹ کر لیجئے کہ مکہ کے درمیانی دور کی یہ سورت ہے, ترتیب میں ویسے ہی نازل ہوئی جیسے یہاں, جیسے سورۃ شورا ہے نا, اس کے بعد اب ہم سورۃ نمل پڑھ رہے ہیں, تو ترتیب میں بھی یہ سورت شورا ہی کے بعد نازل ہوئی. یہ ابن عباس کا قول ہے کہ سورۃ شورا ہوئی نازل, پھر نمل, پھر قصد, یعنی وہی ترتیب ہے. پوری سورت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دو حصوں میں نازل ہوئی ہے. پہلا حصہ سورت کے شروع سے لے کر چوتھے رکوع کے خاتمے تک ہے, اور دوسرا حصہ پانچویں رکوع سے آخر تک ہے. پہلے حصے میں اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا, نمبر ایک, قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اس کی خوشخبریوں کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اس حقیقت کو مان جائیں کہ یہ کتاب دنیا اور آخرت کی عزت دلانے والی کتاب ہے, اور عملی طور پر پھر اس پر عمل بھی کریں, اور اس کا اپوزٹ بھی ہے. پھر اسی میں ہمیں فرعون اور قوم سمود اور قوم لوط, ان تین قوموں کے سرداروں کی روشنی میں دکھے گا کہ جب لوگوں کو اتھارٹی ملتی ہے تو بڑی بڑی نشانیاں دے کر بھی وہ نہیں مانتے, और फिर हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का देखेंगे कि अल्लाह ने दौलत हुसन हुकूमत शान शौकत सब कुछ दिया था, कुफारे मक्का तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, इसके बावजूद वो खुद को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह समझते थे और अल्लाह ताला की नेमतों को सामने रखते थे। तीसरी चीज हम देखेंगे मलका सबा की, वो पहली दफा अब यहाँ आएगी। बज़ाहर शिर्क के अंधेरों में थी लेकिन जो ही हक की चकाचौंध उस तक पहुंची, दिल की अच्छी थी, तासुब से पाक थी, तो अल्लाह ताला ने उसको भी इस्लाम दे दिया। तारीख अदब की नहायत मशहूर और दौलतमंद कौम की पर हुक्मरान थी, उनके पास वो सब असबाब थे जो किसी को भी मगरूर कर देते हैं, किसी को भी घमंड में मुब्तला कर सकते हैं, लेकिन इस औरत ने इस्लाम कबूल करके उस रिवायत को तोड़ा और फिर आखिर में हम देखेंगे कि कायनात पर कुछ गौर है। अब हम चलते हैं सूरत पर, बहुत ही हल्का फुल्का सा अंदाज पाएंगे आप इस सूरत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन हरूफ मुकत्तात है, आप देख रहे हैं कि मुसलसल कई सूरतों में यही अंदाज है। यहाँ देखिए इसी आयत के अंदर, अलग आयत नहीं है, ये छोटा सा फर्क नोट करें। अमूमन हरूफ मुकत्तात एक अलग आयत होती है लेकिन उसके बाद दूसरी होती है, तो यहाँ क्या है, तौसीन वक्फ तिलका आयातुल किताब, ये हैं आयतें कुरान, सॉरी तिलका आयातुल कुरान, ये हैं आयतें कुरान की, व किताब मुबीन और किताब मुबीन की। तिलका क्यों आया, पीछे तो जालिका गुजरा था, तो तिलका शान के लिए। किसी देखे दो होती हैं चीजें अरबी जुबान में, इस्म इशारा एक चीज होती है, एक होती है करीब की चीज, एक होती है दूर की। जालिका और तिलका मुजक्कर मुअन्नस और दूर और करीब का फर्क है। आप बस अभी इतना समझ लें कि शुरू में कुरान में पढ़ते हैं सूरत बकरा में जालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है, तो जालिका होता है दूर की चीज के लिए, तिलका करीब की, तुम्हारे हाथों का ये कुरान और उसके अंदर आते हैं, ये हैं वो आयतें कुरान की। अब यहाँ कुरान के नाम नोट कीजिएगा, पहला नाम अल कुरान, वह किताब मुबीन, दूसरा नाम किताब मुबीन, यानी बल्कि किताब अलग भी नाम है कुरान का, यानी अल किताब, लेकिन यहाँ अल किताब की बजाय किताब मुबीन। तीसरा नाम है कुरान का हुदन, हुदन हिदायत वाली। पीछे हमने अभी सूरत के एंड पे पढ़ा जिक्र, रिमाइंडर नसीहत करने वाली, वो भी कुरान का नाम था, तो असल में इस किताब का नाम होना चाहिए था हादिया, हिदायत देने वाली दिखाने वाली, ठीक है, लेकिन हादिया की जो हुदन कहना ऐसे ही है कि किसी को ये कहना कि फुलां बड़ा बहादुर है, ये कह दिया कि फुलां तो शेर है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। ये किताब हुदन भी है, वबुश्रा लिल मुमिनीन, और खुशखबरी भी है, बशारतें भी देती है किनको, जो कि ईमान लाते हैं। गोया के ये सूरत हमें कुरान की अहमियत बताती है। कुरान खुद एक लफ्ज है, करा यकरउ से बार बार पढ़ी जाने वाली चीज, एक वजन होता है अरबी में फौलान, फौलान के वजन पर कुरान, जिसने अपने अंदर बहुत सारी चीजों को जमा किया हो, और हकीकत है कि कुरान ने अपने अंदर उलूम का खजाना जमा किया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद एक इंसान हकीकत में अपने आप को बहुत एनरिच फील करता है। और किताब मुबीन बयान करने वाली, वाजे करने वाली, रोशन है, ऐसी किताब है कि जो शख्स भी आंखें खोल कर पढ़ेगा वो माने बगैर नहीं रह सकता कि ये सच्ची किताब है, ये अल्लाह की तरफ से है, हुदन है, जो इसको किताब हिदायत बनाएगा उसके लिए ये किताब हकीकत में एक रोशन चिराग बन जाएगी, रोशनी का एक मिंबर बन जाएगी, और होते होते पुलसरात के अंधेरों पर भी इसको रास्ता दिखाएगी, कब्र को रोशन करने के बाद, मैदान हशर की सारी अंधेरी घाटियों को आसान करवाने के बाद। हर बुशरा है किन के लिए, लिल मोमिनी, हर एक को नहीं, सिर्फ वो लोग जो मोमिन हैं। कौन है वो जिनका नाम मोमिन है, मोमिना नाम है, जो खुद को मोमिनात के ग्रुप से मानते हैं, नहीं, आओ देखो कि मोमिन कौन होते हैं। आयतीन अल्लज़ीन यकीमूनस्सलात, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं, लिख लीजिए पहली सिफत, मोमिन कौन है जो नमाज पढ़ता नहीं कायम रखता है, उसका ख्याल रखता है, उसको वक्त पे पढ़ता है, और सबसे बड़ी बात है अपने इस 5 से 6 फुट के जिस्म पर उसका असर कायम रखता है, फुहश और बुराई से दूर रहता है। इन सलात तनहा अनिल फहशाय वल मुनकर। और इसके बाद वह यूतून ज़कात, उसका दिल माल की मोहब्बत से पाक होता है, वो 100 में से 250 को देता ही है, वो अपने नफ्स में से माल दौलत की मोहब्बत को खुरच के निकालता है। और तीसरी वहम बिलाखिरतिहुम यूकिनून, और वही तो हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अगर आप देखें तो सूरत बकरा के आगाज में 6 बातें थी, अल्लज़ीन यूमिनून बिलगैब वयुकीमून अस्सलात वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। यहाँ देखिए उसमें से कौन सी बातें आ गई, यूमिनून बिलगैब नहीं आया, वो लफ्ज ईमान में छुप गया, यूकीमून अस्सलात उधर भी था इधर भी है, वहां क्या था मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, तो यहाँ यूतून ज़कात था। कोई सिर्फ इस एक आयत को पढ़ के कह दे जी सिर्फ मोमिन बनने के लिए 3 काम लाजमी है, नंबर 1 नमाज और ज़कात और आखिरत पर यकीन, और कोई आपसे कहें कि साबित करें हज किधर है। देखो कुरान की आयत में लिखा है कि मोमिन वो होते हैं जो ये 3 काम करते हैं। कोई आपसे कहता है कि देखें इस्लाम में तो विरासत के कवानीन को ना मानने वाला भी मोमिन है, क्योंकि कुरान में आया कि लिल मोमिनीन अल्लज़ीना युकीमूना सलात। पॉइंट समझे, कुरान में फितने डालने वाले और अधूरी शरीयत लोगों को पेश करने वाले और सिर्फ एक आयत से पूरा दीन समझने वाले लोग ऐसे ही मुंह की खाते हैं। अब आप परेशान होते हैं, हाय हाय ऐसे। और अगर आप परेशान ना हो तो आप थोड़ा सा अपने होश कायम रखें तो आप कह देंगे कि एक आयत में तो ये है, साथ ही आप इसके दूसरी आयत पढ़ा दें। सूरत बकरा के शुरू की उसमें 6 बातें हो गई, सूरत अनफाल के शुरू में क्या है, अल्लज़ीन वजिलत कुलूबहुम, यदि जब पूरे कुरान से मोमिनों की सिफात जमा करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें शरीयत का कोई नुक्ता नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरा इसका जवाब देखिए, जो यहाँ भी खूबसूरत नुक्ता है जो सूरह बकरा में भी था, कि वहुम बिल आखिरतिहुम यूकिनून, इनका आखिरत पर पूरा यकीन है। ये लफ्ज अपने अंदर इल्म और अमल की हर किस्म को ले आता है, यूकिनून। दरअसल इंसान के अमल और किरदार के अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक बराह रास्त अकीदे आखिरत पर है। अगर आखिरत पर यकीन कामिल नहीं है तो नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, हालांकि इधर लिखा हुआ है ज़कात ना दें, हज ना करें, और आप कहें कि सब कुछ हमारे लिए ठीक हो जाएगा तो ये दुरुस्त नहीं होगा। अब सवाल पैदा होता है कि हम तो कहते हैं ईमान, तो यहाँ यकीन क्यों है, ईमान और यकीन का क्या फर्क है? तो बात समझ लें, ईमान क्या है। देखिए आप इसकी वो अब तारीफ करें कि जिससे अब मेरे और आपके अपने अमल को चेक करना आसान हो। फिकी बातें और डिटेल की बातें हम पढ़ते भी और पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन ईमान है रसूल की इत्तबा का नाम, और यकीन है अल्लाह से छोटे से छोटी नेकी और बड़े से बड़े गुनाह पर अजर मिलने का यकीन। जब ईमान यकीन में बदलता है ना, तो इंसान नबी की इत्तबा कर रहा होता है और हर उस बात में केयरफुल होता है जो कल आखिरत में उसको भुगतनी पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इन चीजों में पढ़कर कहते हैं हमें आखिरत पर यकीन है, लेकिन उनका अमल उनके इस दावे की दलील नहीं देता। अल्लाह ताला ने पूरी नस्ल इंसानी के लिए कुरान को हिदायत की किताब बनाकर भेजा था, लेकिन याद रखिए इससे सिर्फ वही लोग फायदा उठाते हैं जो हिदायत के तलबगार हों, जो अपने दिलो दिमाग की खिड़कियों को हक के देखने और सुनने से बंद कर लें और अपने दिलों को गुनाहों की वजह से स्याह कर लें, उनको कुरान कभी सीधी राह नहीं दिखाता। वो तो ऐसे ही लोग हैं कि जो सूरज को देखकर आंखें बंद कर लें। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात करके हम सबको सोचने पे माइल कर दिया कि तुम देखो तुम किधर हो। हम सब अपने आप से पूछें, क्या मैं मोमिन हूँ, क्या मुझे अल्लाह के वादों का यकीन है? आज एक नुक्ता भी लगाती हूँ तो क्या मुझे उसको जानना और उसके बारे में सोचने का यकीन है? देखिए अगर आप देखें ना, फमैन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा और शर्रन यरा, ये जुबान नहीं फिर बोलती, वल्लाही गूंगा हो जाता है बंदा, ये भुगतना पड़ेगा। मैं चुपी अच्छी, ये जिधर नजर उठ गई अभी आंखों को जाके पाक कराना पड़ेगा, मैं नहीं देखती। किसी बारे में बदगुमानी और केयरलेस एटीट्यूड रहता ही नहीं है इंसान की जिंदगी में अगर वो आखिरत का यकीन रख ले। आप इसको यूं समझें, मैं जब ये लफ्ज यूकिनून बोल रही हूं ना तो मेरे जहन में एक लफ्ज आ रहा है बहुत ही मारूफ है आज के दौर में, वेट वॉचर। समझ गए होंगे आप में से बहुत सारे लोग, जो नहीं समझे तो उनको मैं समझाती हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे भी जैसे होते हैं उनको नहीं समझ आता। वेट कहते हैं वजन और वॉचर मैंने वॉच करने ले, यानी वो लोग जो हर लम्हे अपना वजन चेक करते रहते हैं, कैलोरीज गिनते रहते हैं। अक्सर आप खाने की चीजें यहां देखें जो भी आती हैं तो उस पर सिंगल जो क्या बोलते हैं उसको एक वन सर्विंग सिंगल सर्विंग की कैलोरीज लिखी होती हैं, इस चॉकलेट में इस बिस्किट में इसमें इतनी है, फिर साथ ही निकलनी लिखी होती है कि एक दिन की 2000 होती है ऑलमोस्ट, तो उसमें से ये इतनी निकल जाएंगी। ये है वेट वॉचर, ये वो लोग हैं। ले आइए रोजा नहीं है लेकिन अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने कहा तो दही छोड़ दें। तो आप तब देखिए कि जो वेट वॉच करते हैं ना, बस यकीन आखिरत का क्या है कि वो अपने गुनाहों का और नेकियों का वेट वॉच करते हैं। हो ही नहीं सकता कि बंदा खुद को मोमिन के और फुटक करके उसके मुंह से एक जुमला निकल जाए और वो ऐसे कंधे उचकाए, चाहे वो जज्बात में हो, चाहे वो जोश में हो, इमोशनल हो, खुश हो, गमजदा हो, कुछ भी हो, वो नहीं बोल सकता खामोश। क्यों? उसको पता है कि कोई मुझे वॉच कर रहा है, वल्लाहु बसीरुम बिलिबाद। और ये कैफियत अब मेरे अंदर तो आनी ही चाहिए, आपके अंदर भी आनी चाहिए। एक निशान भी लग जाए ना अगर मेरे से किसी जगह पे, तो मैं सोचूं कि इसको मुझे कल आखरत में दिखाया जाएगा, तेरी नासमझी से इस टेबल क्लॉथ पर ये मार्कर का निशान लग गया था, पेंसिल का थोड़ा सा बुरादा भी अगर फ्लोर पे गिर गया और किसी के पांव में लग गया या बाद में कोई साफ करते हुए कहीं ये लोग कुरान पढ़ के गए, तो मेरी तो सारी नेकियां जाया हो जाएंगी। फूक फूक के कदम रखने वाला होता है मोमिन, वो नहीं ऐसी बेतुकी बातें करता और वो बड़े बड़े दावे भी नहीं करता। और सबसे बड़ी बात याद रखिए, चूंकि पीछे किताब की चार सिफात है, अल कुरान किताब मुबीन हुदाम व बुशरा, ये चार सिफात हमें ये बताती हैं कि कोई और तो हो यू के नून नबिल आखिरा, लेकिन किताब के साथ जुड़ने वाले को इसका यकीन हो जाता है। और अल्लाह मुझे और आपको हम सबको इसकी तौफीक दे। सवाल पैदा होता है कि ये सारी बातें कोई नई तो नहीं है, पहली दफा तो नहीं पढ़ रहे, ये सब कुछ होता क्यों नहीं है? इसका जवाब आयत नंबर 4 में, इन्नल्लज़ीन ला यूमिनून बिल आखिरा, वो लोग तो नहीं मान लाते आखिरत पर। या फिर नोट कर लें एक नुकता, ये तो नहीं कहा कि इन्नल्लज़ीन ला यूकिनून बिल आखिरा, क्योंकि ऊपर तो हम यकीन की बातें पढ़ रहे हैं और हम रोते बहुत हैं यकीन के लिए, आता क्यों नहीं है? इसलिए कि अभी ईमान में खलल है। यहां ये नहीं कहा कि जिनको यकीन नहीं है, वो तो बड़ा आला दर्जा है, जो ला यूमिनून बिल आखिरा, जिनको ईमान ही नहीं है, अभी नबी का रंग ही जिंदगी में नहीं आया, तो ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, हमने इनके आमाल को मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत कर दिया, एडॉन कर दिया, ब्यूटीफाई कर दिया, इतना सजा दिया उनके आमाल को कि उनको अपने गलत काम भी अच्छे लगते हैं। कल्चर के नाम पे, फन के नाम पे, दीनदारी के नाम पे, रस्मी कलामी कामों के नाम पर वो ऐसे काम करके खुश होते हैं जिसको वो दीन समझते हैं, लेकिन असल दीन से उसका दूर तक का ताल्लुक है। इसमें वो सारे नाम आ जाएंगे जो दीन के नाम पे बेदीनी के हम करते हैं, और इसमें वो सारी नेकियां जो अल्लाह के लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं, दिखावा, रियाकारी, एहसान जतलाना, बद दिली, पांव पटकना, अंदर नफरतें उगल रही हैं, दिल जुबान से फिर मोहब्बत बोलनी पड़ती है, अंदर का ग्रह जो आ जाता है वो क्या कि उनको अपना हर बुरा काम खूबसूरत लगता है। कहूं या महून, बस वो भटकते फिर रहे हैं। देखिए या महून याद है आपको, सूरह बकरा में भी आया था, ओम युन आया था वहां, ये ओम हुन है, आइन मीम या, आंखों की बसारत है, मादी बसारत के अंधेपन का नाम है, यानी ब्लाइंड होना। लेकिन ओम हुन जो यहाँ है, इससे मुराद है बातने बसीरत बातनी, अंदर कंदापन। वही बात जो सूरत हज की आयत 46 में पढ़ चुके, पैन नहला तामल अबसार, ये तो नहीं है कि आंखें अंधी होती हैं, वलाकिन तामल कुलूब लतीफीस फिस सुदूर, बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर है। ऐसे लोग फिर दीन की असल नहीं लेते और आंखों का अंधा तो आप देखिए ना, क्या क्या नुकसान उसको होगा, किसी गटर में गिरने का डर होगा उसके, हो सकता है गलती से बिजली के तार को हाथ लगा ले। आप इमेजिनेशन में लाए, एक शख्स ब्लाइंड है, यहाँ से लेके उसको बाहर डोर तक जाना है, कई खतरे हैं उसके साथ, इधर हो सकता है आते जाते उसको टेबल का कोना छू जाए, सीढ़ी से वो लुढ़कने लग जाए, फिर नीचे स्टेयर्स में थोड़ी परेशानी हो, मुमकिन है ना, इतनी सी तकलीफ है। लेकिन मैंने एक आधा बंदा मेरी आंखों में आ जाता है ऐसे वक्तों में कि जो जाहिर न भी ना होने के बावजूद आंखों वालों से भी ज्यादा अच्छे काम करते हैं। मेरी अपनी सिस्टर है तो उनकी दोस्त थी एक बहुत अच्छी स्कूल में कॉलेज में, तो वो ब्लाइंड थी, बिलीव में आज भी इतने साल की बात है, लेकिन मेरी जहनों में वो आ गई है इस वक्त, किस तरह से वो लड़की अपने काम करती थी। और बाद में भी उनकी शादी भी हुई, और मुझे अब याद पता नहीं आगे बच्चा हुआ अब क्या है, मुझे नहीं कुछ उनका पता, लेकिन वो कई आंखों वालों से अच्छी थी। कैन यू बिलीव एक ब्लाइंड लड़की कुकिंग भी करे। मैं बचपन से ये सोचती थी कि वो माचिस कैसे जलाती होंगी, तब तो स्टोव नहीं थे, ऐसे नहीं होते थे, मेरा ख्याल माचिस ही जलती थी, इतनी वो सेंसिबल थी, मैंने खुद देखी हुई मिली हुई, इतनी प्यारी नाजुक सी बच्ची थी। तो आंखों के अंधे तो इतना नुकसान नहीं देते, इसके बरक्स जब बंदे का अंदर का सिस्टम खराब होता है ना, तो इसका मिसाल आपको मैं दे देती हूँ समझाने के लिए सिर्फ एक है कि आपका चूल्हा नहीं जल रहा, आपके बटन में नक्श है, माचिस नहीं ठीक, गीली माचिस है, कुछ ना कुछ करके आप माचिस की बजाय कपड़े को धागे को कागज को आग दिखाकर आग जला ही लेंगे। दूसरा मसला पीछे से मेन स्विच खराब हो गया, जो मेन बिजली का कनेक्टर है वही नहीं गड़बड़, तो आप सारी माचिस की तीलियां जला लें, चूल्हा नहीं चलेगा। हिदायत की चमक नहीं मिलती जब अंदर का कनेक्शन खराब हो, इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब, यही वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अज़ाब है, वहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, और आखिरत में तो ये लोग सबसे ज्यादा खसारे में होंगे। देखिए इसी आयत पे नजर रखिए, मैं भी जब बोलती हूँ तो बिल्कुल उस नजर पे नजर टिकाती हूँ, हुमुल अख़सरून है, हुमुल खासिरीन नहीं है, खासिर खुसरान खसारा आम बातें हैं, लेकिन अख़सर क्या है, अफ़अल का वजन है, अफ़अल तफ़दील का वजन है, सबसे ज्यादा बैंकरप्ट ये लोग होंगे जो बज़ाहर नेकियां करते थे लेकिन अंदर से मेन स्विच खराब था। وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, ارے نبی یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ پھر قرآن کی بات, اگر آپ یہ چھ آیتیں دیکھیں نا, اگر آپ میں دوبارہ آپ کو پیچھے سے تھوڑا سا دکھا دوں تو شروع کی دو آیتیں کس کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, اور آیت نمبر سکس کس کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, یہ دو بریکٹس ہیں, بیچ میں الذین یقیمون الصلاۃ سے یوقنون تک ایک آئیڈیل کردار ہے, اور ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ سے لے کے الاخرون تک دو کردار ہیں۔ آپ اگر اس کو یوں لکھیں نا, یہ دو بریکٹ ہیں, باہر قرآن ہے اور بریکٹ کے ایک سائڈ سے شروع کریں تو مطلوب ایمان ہے اور دوسرے ایج پہ غیر مطلوب چیزیں, اور ان کی وجوہات سمجھ آ گئی کہ ان کے لیے دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ ایک اتنی بڑی حقیقت ان چھ آیتوں میں کھول کر بیان کر دی, اور وہ کیا ہے, اب اس میں سے چند باتیں عمل کی نوٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب کسی کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تو اسے اپنی برائیاں نظر نہیں آتی, اچھے برے کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اور اب یہ جو میں آپ کو نوٹ کرانے لگی نا, اللہ جو یہ دیکھے, میرے پاس ایک کاغذ ہے, پیپر ہے, میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں یاد یہ کب سے میں نے پہلی دفعہ دوسری دفعہ جب کبھی قرآن پڑھایا تھا نا, آج سے 10-12 سال پہلے, تب کا یہ پیپر میرے پاس ہے جس کے اندر سے میں آپ کو لکھانے لگی کہ جب ایک انسان کے اندر ایمان نہیں ہوتا نا تو نمبر ایک, اس کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی۔ اب آپ اس کو ایسے لکھیے کہ بس ایک لائن میں ایک ہی چیز لکھیے گا, آگے جگہ چھوڑ دیں, اور وہاں پہ چیک لسٹ, یس یا نو, ہاسوا, میں کیسی ہوں, میرا ایمان کیسا ہے۔ دوسری بات, اس کو اچھے برے کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ تیسری بات, ایمان نہ ہونے کی وجہ سے بے حسی اور بے شعوری طاری ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ بے حس ہو جاتا ہے, کوئی محسوسات ہی نہیں اس کے ہوتے اور شعور کی کمی. پھر اگلا, برے اعمال برے لگنے کی بجائے اچھے لگنے لگتے ہیں, زینا لہما ما لہو. اب آپ ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر لے کر اپنے اوپر ایک چیک کر لیں کہ ایمان کے کس درجے پہ ہوں. ڈاکٹرز بھی آج کل بہت سارے پلانرز دے دیتے ہیں نا کہ آپ خود ہی چیک کر لیں آپ کو شوگر ہے کہ نہیں, بلڈ پریشر ہائی ہے کہ نہیں, فلاں کہ فلاں. اللہ نے اس کتاب کو ہمارا ایمان چیک کرنے کا آلہ بنایا ہے. جب ایک انسان اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اس کو برائی بھلائی کا فرق ہی نہ پتہ چلے, بے حس ہو جائے, تو یاد رکھیے پھر فرقان نہیں آتا. ایمان انسان کے اندر فرقان پیدا کرتا ہے. سب سے پہلے بندے کو اپنی برائیاں دکھتی ہیں. ایمان ایک معیار پیدا کرتا ہے جس پر انسان خود کو پرکھتا ہے. ایمان کم ہوتا ہے تب دوسروں کو پرکھتے ہیں, کریٹیسائز, تنقید, اندر کی بات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں. اور ایمان آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں نہیں, مجھے خود کو دیکھنا. جتنا دین کا علم بڑھتا جاتا ہے نا, اتنا انسان اپنی غلطیوں کا حساب لینے والا ہوتا ہے. مثلا آپ کو کچھ پریکٹیکل ایگزامپل دیتی ہوں. نماز نہ پڑھنے والا اتنا عادی ہو جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کا, احساس ہی مٹ جاتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے کوئی ایسا شخص, کہتا تم اپنی پڑھو, میری فکر نہ کرو, مجھے سب آتا ہے, تم میری لیے نہ اتنی بڑا کرو, میری نمازیں ہی نمازیں, یہ جو بچوں کے لیے مال کمانے جاتا ہوں یہ بھی میری عبادت ہے. اور کوئی کہتا ہے گھر نہیں صاف کرتی, یہ عبادت ہے. اور اخیر میں آپ کو ہوتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھنا انسان کو اتنا بے حس کر دیتا ہے کہ پھر فرائض کی پابندی تو چھٹی, حرام کے لیے کیئرلیس ہو جاتا ہے. لا یشعرون, یہ لا محالہ نتیجہ. شروع میں آپ فرائض کو کیئرلیسلی لیتے ہیں, چلو نا نماز سے کیا ہوتا ہے, اور میرے پہ تو زکات نہیں, میں تو مقروض ہوں, اور میں تو حج کر ہی نہیں سکتا. پہلی سٹیپ. پھر دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے حرام لک میں بھی نکل جاتا ہے. کیا سوچ کے, میری مجبوری ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن میں کیا کروں, میں بھیک مانگوں, کیا میں لوگوں سے مانگ کے لاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, لوگ مجھے اپنی خوشی سے دیتے ہیں, بلیف میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے نا, تو اس کو اپنی ایک ایک چیز کھٹکنے لگتی ہے, اپنی ایک ایک بات کو چیک کرتا ہے, تولتا ہے, پھر بولتا ہے, پھر اور ایمان بڑھتا ہے. تو صرف لفظ نہیں, سوچوں کو بھی انسان چیک کرتا ہے. پہلے کیئر لیس بول جاتا ہے, پٹ پٹ بول دیا, بعد میں کہتے کیوں بولی, کتنی بری بات تھی, شاید غلط ہوئی تو کیا ہوگا. لیکن جب ایمان آتا ہے پھر اس پہ کنٹرول الحمدللہ ہو جاتا ہے. لیکن سوچیں بہتتی ہیں, وہ آوارہ سوچیں, وہ پھر شیطان اس میں چلتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بندہ کہتا ہے نہیں, میں نے بری سوچ بھی نہیں لانی, کیونکہ بری سوچ وہ ڈھیر ہے گندگی کا جہاں سے برے الفاظ پیدا ہوتے ہیں. پیچھے پڑھ چکے ہیں کلمۃ الطیب اور کلمۃ الخبیث. زیادہ ایمان کا ہونا ایک کیفیت ہے, ایمان کا کم ہونا یہ دوسری کیفیت ہے, اور ایمان کا نہ ہونا یہ تیسری کیفیت ہے. اور آج کل جو حدیث کا جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ایمان کے کتنے خوبصورت شعر ہیں. مختلف کیفیات ہوتی ہیں مختلف وقتوں میں. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا اپنا احتساب زیادہ ہوگا, اور جتنا ایمان کمزور ہوگا نا اتنا دوسروں پر نظر زیادہ ہوگی. آپ خود کو سوچیں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو 19 پارے پہ لا رہا ہے اور بہت سارا شعور آپ میں آ رہا ہوگا, مجھے یقین ہے اللہ سے. آپ تب کیسی تھی جب قرآن نہیں پڑھتی تھی؟ مطمئن تھے, سمجھتے تھے سب ٹھیک ہو رہا ہے, چلو دوسرے سے تو بہتر ہوں. مجھے وہ لاڑ دکھاتی تھی, کوئی بچی ذہن میں آتی ہے گلے میں تو لیتی ہوں, میری دوستیں تو گلے میں بھی دوپٹہ نہیں لیتی. یہ کیفیت ہے. جیسے کوئی کبھی آپ کو کہنا آپ تو بہت اچھے ہیں, تو میں کہتی ہوں اچھے تو ہم تب تھے جب قرآن نہیں پڑھتے تھے. چھوٹی سی اپنی نیکی پہ مطمئن تھے تو سب ٹھیک ہے. جب پڑھا, جتنا پڑھتے گئے ایسے لگا اپنے سے کوئی خرابی نہیں ہے. یہ تو کائن ہے, یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہر دفعہ کا قرآن پڑھنا, زوم ان. چھوٹی سی تصویر دیکھیں آپ کو سارا ٹھیک لگتا ہے, ذرا سی بڑی کر دیں تو ہو سکتا ہے پورس دکھیں, اور بڑی کر دیں تو دھبے دکھیں, اور کریں تو بال دکھیں. قرآن تو یہ کائن ہے جس کے اندر خود کو دیکھنے والا سورج کی روشنی میں خود کو دیکھتا ہے. تو لہٰذا جس کو ٹھیک ہونا ہے اس کو اس کتاب کے مرر کو اپنی آنکھوں پہ لگانا پڑے گا. جو حقیقی معنوں میں نیک لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, وہ پوز نہیں کرتے, हाय हम बड़े गुनाहगार हैं, और फिर करने लग जाते हैं। छोटे ईमान के साथ छोटी नेकी भी बड़ी लगती है, और बड़े ईमान के साथ बड़ी बड़ी नेकियां भी छोटी लगती हैं। मैं ये करूं, ये क्या बड़ी बात है। और दिन रात अल्लाह ताला आपको इन सारे मरहलों से गुजारता है। मैं खुद फील करती हूँ, एक जगह बात हो रही थी तो मैंने उन्हें कहा, मुख्तलिफ ग्रुप के लोग जमा थे, कुछ वो थे जो माशाल्लाह 2-3 साल में कई दफा कुरान से गुजर गए, कुछ अभी 1 साल में, कुछ अभी अंडर चल रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि इस वक्त आप सब में से एक दूसरे की बात मानने के अतबार से एक ही क्राइटेरियन है, जो काम हो रहा है, जो बात हो रही है, अगर आपको नहीं समझ आ रही ना तो आप ये कहें असल में मेरा भी कुरान नहीं पूरा हुआ ना, इसलिए मुझे नहीं समझ आ रही। ये जिनका पूरा हो गया इनको मेरे से बात अच्छी समझ आ रही है, और जो पढ़ चुकी है एक बार अगर उनको बात समझ आए तो वो कहे नहीं मैंने तो भी एक ही बार पढ़ा है, ये मेरी सिस्टर जो दूसरी है जो 3 दफा कुरान पढ़ चुकी है जो ये बात कहती है ना, ये ठीक है। क्योंकि कुरान एक बार पढ़े, फिर 2 बार पढ़े, फिर बार बार पढ़े, इससे आप अंदर से भी जवान होते हैं। कल आप छोटे थे, अल्लाह आपसे छोटे काम कराता है, अब आप बड़े हो रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे बड़े काम कराएगा। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को या महून होने से बचाएं, भटकना फिरना। अंधा भी तो इधर उधर ठोकरें खाता है ना बेचारा, टटोलता है। इसी तरह दिल का अंधा भी इधर उधर भटकता है, उसको करार ही नहीं आता एक जगह पे, बार बार सोचता है ये ठीक जगह नहीं है, ये ठीक नहीं है, चलो मैं कुछ और चखता हूँ, कुछ और देखता हूँ, और कभी दुनिया में भागता है, कभी इधर। वो कहता है ना कि काबा मुझे बुलाए है और रोके मुझे कुछ और है, कुछ इस तरह की बातें हैं अंदर। गुनाहों के बबाल से ऐसे बंदे को अपनी बुराइयां अच्छी लगती हैं। ईमान और हया लाजिम मलजूम है। जब ईमान आता है तो हया बढ़ती है, और जब ईमान जाता है तो हया चली जाती है। हया जाती है ना तो इंसान कॉन्फिडेंस के नाम पर गुनाह करता है, और खुश क्या होता है, देखा कितनी सफाई से झूठ बोला, बेवकूफ बना दिया, आज मैंने फुलां को उल्लू बनाया, ये सब लाशौरी की बातें। अल्लाह कहता है अल अखसरून, सबसे ज्यादा खसारे में। आपको सूरह कहफ की आखिरी आयतें याद आई हैं, अल्लज़ीन दल्ल सायहुम फिल हयात दुनिया, ये वो बेचारे लोग हैं जिनकी सारी कोशिशें इस दुनिया की जिंदगी में खो गई, और यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ, और बेचारे गुमान जे करते रहे कि हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और एक आखिरी बात करके आगे चलती हूँ कि जब ईमान बढ़ता है ना, ज्यादा ईमान वाला शख्स ये सोच ही नहीं सकता कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बल्कि हर वक्त का यही नदामत होती है कि जो करने का हक था वो नहीं किया। और जब थोड़ा सा ईमान होता है तो इंसान अपने कंधे थपथपाता है कि ठीक है मैंने ये बहुत कर लिया और बहुत अच्छी तरह कर लिया। अल्लाह कहते हैं आप इनको कहते रहे वही नकल तुलक्कल कुरान, तुलक्का के लफ्ज में क्या छुपा हुआ है, बहुत दफा बात हुई, तलक्की क्या होता है जी, किसी से मुलाकात करके इल्म लेना, एक घर बैठ के ले लिया आपने। तलक्की क्या होती है, किसी के पास बैठना, सीखना और अखज करना, डीप अंडरस्टैंडिंग। अलबत्ता सिखाए जाते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती थी, वो एक तलक्की थी और उससे फिर इल्म मिलता था। सूरह नजम में भी हम पढ़ेंगे अल्लमहु शदीदुल कुवा, आपको सिखाते हैं शदीद कुव्वतों वाले। तो हम भी अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला तू हमें भी इस तरह से लेने वाला बना इस किताब को कि हम इसको बेहतरीन तरीके से अखज़ कर सकें। अब आप देखिए कि ये थी तमहीद। अब ये सारे सबक या बल्कि पूरी सूरत में याद रखिएगा, अगली चंद आयतों में अल्लाह ताला ने किस्सा मूसा सिखाया, 7 से 14, सिर्फ 7 आयतें हैं, जिसमें आपको बस आज एक नए एंगल से देखना है। मैं पूरा इकट्ठा पढ़ती हूँ साथ में वही वजाहत के साथ, लेकिन इसमें से जो इस सूरत इसका थीम मिलता है उसका एंड पे जिक्र करूंगी इंशाल्लाह। इस काल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा, याद करो जब मूसा ने कहा मैंने अपने घर वालों से, सॉरी, जब मूसा ने कहा अपने घर वालों से कि बेशक देखी है मैंने आग। अब तरीका ये होगा कि आयत पढ़ के मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब देंगे। ये वाक्या कब पेश आया, सब मिलके बोले, सब बोले मिलके, सबको कम से कम 20 बार हमने इन 19 पारों में डिस्कस किया। मदियन से मिस्र आते हुए मूसा के साथ कौन था उस वक्त, सब बोल दें, बीवी बच्चे थे, दिन का वक्त था कि रात का? क्या कहा? साती को मिनहा भी खबर, मैं वहां से तुम्हारे पास एक खबर लेकर आऊंगा। औ आती कुम भी शिहा बिन कबसिन, या कोई दहकता हुआ अंगारा ले आऊंगा। क्यों भाई? लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम आग ताप कर ताप सको। ये बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास क्या लेने गए थे जी? खबर किस चीज की? रास्ते की खबर। और कोई इंसान मिल जाए, सहरा में भटक रहा हूँ, तो खबर से मुराद है कि इधर कोई है, कोई खैर खबर वाला बंदा, रास्ता मालूम हो जाए, कोई इसमें अंधेरे में कोई मौजूद है तो मैं उससे ले लूं। और आती कुंभी शिहाब बिन कबस, शिहाब बिन कबस क्यों लेना चाहते थे? यानी जलता वंगारा, शिहाब कहते हैं दहकता हुआ जी, सर्दी के लिए। अबारत से, इस इबारत से ये पता चलता है कि ये रात का वक्त था, सर्दी थी, और मूसा एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जहां से पहले से वाकिफ नहीं थे, अंधेरा था, ठीक है। और यहाँ शिहाब बिन जो होता है ना, कबस अंगारा, बमानी मकबूस, मफूल के वजन पे, और तस्तलून का लफ्ज है सख्त आग लेना, आग तापना। यहाँ एक छोटा सा अमल का नुक्ता भी देख ले कि मूसा दुनियावी काम के लिए निकले थे, ये दोनों काम दीन के तो नहीं थे। जाहिर है कि रास्ता मालूम करना है या कुछ रोशनी करनी चाहिए, ठंड से बचना है, तो ये इंसानी काम थे, लेकिन रात जाते को अल्लाह ने अपने काम का बना दिया। अल्लाह पे तवक्कुल था, निकले इस उम्मीद पर के चलो, और बीवी की खिदमत के नियत से निकले, तो अल्लाह ताला ने आप देखिए कि उनको क्या दिया। फलम्मा जा हनूदी अम्बूरी कमन फिन्नार, फिर जब वहां पहुंचे तो इनको पुकारा गया कि बहुत मुबारक है जो इस आग में है, वमन हौलहा, और जो इसके पास आस पास है। नया लफ्ज आपको जो लग रहा होगा बूरी का, बरका सही है, तो बारक अल्लज़ी वाला लफ्ज है, मजहूल होने की वजह से बूरी का पैसिव वॉइस है, बरकत दिया गया, यानी इसमें ये नहीं पता चल रहा कि बरकत किसने दी, लेकिन सवाल पैदा था कि मन फिन्नार वमन हौलहा क्या है। इस पे उलमा ने बहुत कुछ कहा, तो दो बातें हैं, सवाल बना लीजिए, मन फिन्नार आग में क्या था? अब इसके ऊपर बहुत बात पहली बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गैब के मामले होते हैं, और इस पे हम कुछ भी बोलेंगे इससे हमारे अमल पे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाहिर बात है कि इंसान के जहन में ये चीजें आती हैं, तो लिहाजा दूर से आग के शोले जो लपकते नजर आए, वहां पहुंचे कोहे तूर पर तो देखा एक सरसब्ज दरख्त था, आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, हकीकत में आग नहीं थी, अल्लाह का नूर था। तो मन फिन नार से एक तफसीर ली गई, अल्लाह का नूर, जिसकी तजल्ली आग की तरह महसूस हो रही थी। तो मन से मुराद अल्लाह तबारक ताला, और नार से मुराद इसका नूर है, और मन हौलहा से क्या मुराद है? मूसा और फरिश्ते जो उस वक्त मौजूद थे। सही मुस्लिम की एक रिवायत सुन लीजिए, अल्लाह ताला की जात के हिजाब पर्दे को नूर यानी रोशनी, और एक रिवायत में नार यानी आग से ताबीर किया गया, और फरमाया गया कि अगर अपनी जात को बेनकाब कर दे तो इसका जलाल तमाम मखलूकात को जला कर राख कर दे। अल्लाह नूरुस्समावाती वल, सिर्फ समझने के लिए तशबीह नहीं दूंगी, आप खुली आंखों से चढ़े हुए सूरज की तरफ देख सकते हैं? खुद ब खुद आंखें बंद हो जाती है ना, तो जब सूरज को नहीं देख सकते तो सूरज को रोशनी देने वालों को कौन देने वाले को कौन देख सकता है? तो लिहाजा ये है इसकी सिंपल सी तफसीर, और अगर आप इसकी तफसीलात में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मन फिन्नार में किसी ने मूसा को कहा, इधर कहा उधर का, सारी बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन वो कुछ भी था हमें उससे ज्यादा नहीं पता चलता, लेकिन इधर एक तो बातें जो आप किसी भी तफसीर में पढ़ें तो उसको पहले ही नोट कर लें कि वो ठीक नहीं, कि वो अल्लाह की जात ने हलूल नहीं किया था। लोग कहते हैं नऊज़ु बिल्लाह के आग में खुद खुदा था, क्या मखलूक में खालिक आ सकता है? ये जो अकीदा है हलूल है ना, ये आज के दौर में बाज लोगों ने इन आयतों से साबित किया। देखो अल्लाह उस दिन आग में आ गया था, कुछ कहते हैं वो जो सबज दरख्त था और उसमें से आवाज आई थी ना इन्नी अनल्लाह, तो उस दिन दरख्त में अल्लाह था और उस दरख्त ने कहा था मैं अल्लाह हूं, तो ये तो तावील आता है। अल्लाह की जात के बारे में कोई मिसाल नहीं, कोई तशबीह नहीं, उसकी कैफियत नहीं मालूम कर सकते, बस जो है वो है। अल्लाह पाक इस बात से कि वो आग में कैद हो, कभी आप देखिए कि मखलूक भी खालिक के अंदर, खालिक मखलूक के अंदर आ सकता है? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, समझने को कि जैसे ये ग्लास है ना, ये कंटेनर है, इसमें पानी है, पानी इसमें आता है, तो आप कहें कि पानी के अंदर ग्लास आ जाए तो ये तो मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट बात है। तो ऐसी बात नहीं है, बस वो अल्लाह की जात थी, उसने किसी तरह पुकार लिया, हमें इससे कुछ ज्यादा बात ही नहीं है, हम अपने आप को इसमें पीछे कर लें। लेकिन बाहर वाले का अनयूजुअल चीज थी, पहले कभी ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं था, और इसको सुनकर उनको लगा कि ये तो कोई बात है, और फरिश्ते वहां थे, और हकीकत है कि अल्लाह की जात जहां होगी वहां फरिश्ते तो होंगे, और दुनिया में इस वक्त भी फरिश्ते हैं, हमें नजर नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला उनसे अपने हिस्से के काम ले लेता है। तो बहरहाल एक अनयूजुअल बात करके अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के दिल को जमाया। ये सब क्यों हुआ? माहौल पैदा करने के लिए। जब तक अच्छा माहौल नहीं बनता, अल्लाह की बात दिल में नहीं उतरती। अल्लाह से, अल्लाह सुब्हानहु तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करना था, और कलाम करने से पहले वहां चूचा हो रही होती, भाग रहे होते, दौड़ रहे होते, आग किधर है, पानी नहीं है, ठंड बड़ी लग रही है, हीट खोल दो, एसी बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो अल्लाह ताला तो नहीं कलाम करता। यही कैफियत आज नमाज और कुरान के दौरान हमारी होनी चाहिए। आप अपनी सारी जरूरियात से पारे हो। हदीस में आता कि किसी को वॉशरूम में जाने की हाजत है तो पहले हो आए, फिर नमाज पढ़े, क्योंकि नमाज में उसका ध्यान उधर होगा। ईशा और अशा जमा हो जाए, यानी रात का खाना और ईशा की नमाज जमा हो जाए, तो पहले खाना खा लो ताकि तुम्हारी इश्तहा तो पूरी हो, पहले तुम खुद को रूम टेम्परेचर पर तो लेके आओ। तो जब तक अंदर बाहर सुकून नहीं आता, कुरान भी नहीं समझ आता। जैसे बाहर इस वक्त हम सब खामोशी से बैठे हैं, बिल्कुल आपके किसी के दिमाग में कोई परेशानी है, अल्लाह ताला उसकी दूर करे, कोई एक्साइटमेंट है, खुशी है, कोई इंतजार है, इसके बाद अपने बाजार में जाना है, पसंदीदा जोड़ा देखना चमकता हुआ, वो नाच रहा, बात ही नहीं उतरेगी। कोई पूछेगा अच्छा क्या किया, वो क्या किया, मैं तो वहां पहुंची हुई थी, मैं तो साउथ हॉल में थी, और मैं तो इस वक्त पॉलिस में थी, और मैं तो वहां थी, और इधर थी उधर थी। तो दिल दिमाग खाली करके आते हैं ना, तो फिर बात समझ आती है, क्योंकि जाहिर तो आना ही है। तो जो खुद आ जाए और दिमाग बाहर छोड़े, वो तो और भी खराबी का सबब है कि जो जाहिर लेते हैं लेकिन उनके अंदर जाता कोई नहीं है। तो इन सारी चीजों से फारिग करके फिर अपने आप को अल्लाह की बात सुनाने के लिए ले जाएंगे तो फायदा होगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक और छोटी सी बात कि ना वार्निंग, ना कोई अलर्ट। जैसे हमारे यहाँ तो थोड़े से अलर्ट्स मिलते हैं ना, एक मैसेज ही भेज देते हैं कि आपकी मीटिंग है, आप आ जाइएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए, अच्छा आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, आप आइएगा। कितने तरीके होते हैं हमारे पास किसी को भी अल्लाह के लिए बुलाने के। तो मूसा बेचारे के पास ऐसा कोई अलर्ट भी नहीं आया। 8-10 साल गुजार के बीवी बच्चों को लेकर आराम से अपने घर आ रहे हैं कि भाई अब मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास, बहुत साल ससुराल में रह लिया, अब चलता हूँ। अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में मूसा को चुन लिया। क्या पता चला कि जो बंदा दिल का साफ होता है ना, तो कोई जरूरी नहीं कि शुरू से वो किसी आलिम घर में पैदा हुआ, माँ बाप का माहौल बहुत अच्छा हो, अल्लाह सुब्हान तआला उसको किसी भी तरह से ले आता है। आगे सूरत कसस में हम फिर पढ़ेंगे कि दरख्त से एक निदा आ रही थी, फिल बुकतिल मुबारकति मिनश शजरति, कि एक दरख्त के अंदर से एक आवाज आ रही थी, दूर से ऐसे लग रहा था कि वो आग है लेकिन वो आग नहीं थी। मैं इस बात को पढ़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल नबी सल्लम पर पहली वही का मंजर ज़हन में आता है। गारे हिरा में तन्हा अकेले, एज यूजुअल सत्तू और खजूरें ले गए और जाके बैठे, और अचानक एक फरिश्ता आता है और एक रब इसमें रब्बी कल्लाजी खलक। नोट कीजिए, वहां गारे हिरा में एक अजनबी फरिश्ता मोहम्मद सल्लम के पास आया, को वॉर्न नहीं कर गया कि अब कल से आपको नबूवत मिलने वाली है, बी केयरफुल, नहीं, राह चलते मामला। यहां नोट कीजिए कि अल्लाह का चुनाव अनयूजुअल है। दुनिया में आपने किसी को आज जॉब पे बुलाना है ना, उससे 2 महीने पहले कम अज कम प्रोसेस शुरू हो जाता है, अखीर ट्रायल करता करता फिर वो कल से जॉब शुरू करता है। अल्लाह ताला कोई वार्निंग भी नहीं देते। कोई हादसा हो जाता है आपकी जिंदगी में, चीखें निकलती हैं, लेकिन असल में वो प्रेपरेशन होती है, वो प्रेप सेमेस्टर होता है आपके अल्लाह के कामों का। अल्लाह को ऐसी अनयूजुअल खुशी दे देता है, नेमत, हाय मुझे ये मिली, मैं इस काबिल थी, बस सर झुक गया उस रब के आगे, असलम तो ले रब्बिल आलमीन। और ये वक्त जो होते हैं ना, इतने कीमती होते हैं, बहुत खुशी मिल जाए, बहुत गम मिल जाए, इनको पकड़ लें। ये बिल्कुल वही है कि जिस वक्त आपकी माचिस की तीली जल गई है, अब अगर इस वक्त आपने उसको स्टोव के पास किया तो इंशाल्लाह बहुत फायदा उठा लेंगे, और वो तीली बुझ गई तो आप बैठे रहेंगे, चूल्हा ठंडा रहेगा आपका। अल्लाह सुबहान तआला किस तरह से ये सारा मामला करके मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता के और साथ ही फिर इस बात के लिए तैयार करते हैं कि देखो मूसा आप ज्यादा घबराइए नहीं, मंजर और हालात तो जरा मुश्किल है लेकिन बस सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, पाक है वो रब जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तारीफ फिर अल्लाह की, मुराद क्या है, किस चीज से पाक है अल्लाह, नोट करें इस जगह सुभान अल्लाह ने की क्या रीजन है, अल्लाह इस बात से पाक है कि वो आग में मुकय्यद हो जाए। अल्लाह आग में नहीं आ सकता, हमारे यहाँ जो उर्दू का लफ्ज है ना पाक, ये ठीक नहीं है। लफ्ज सुबहान अरबी का एक ऐसा लफ्ज है कि उर्दू में इसका तर्जमा मुमकिन ही नहीं है, हालांकि लफ्ज सुबहान में तो टू मैनी डिफरेंस है, अगर आप इसके इस्माल हुस्ना में सुन के देखें डिटेल तो इंसान हिल जाता है कि अच्छा जब हम ये कहते हैं सुबहान अल्लाह तो इससे ये मुराद है। खैर आगे चलते हैं, या मूसा ए मूसा, कितना प्यार है, अल्लाह खुद बुला रहा है, अब अपने ऊपर ले, कोई बड़े प्यार से आपका नाम लेता है, क्या फीलिंग आती है, हाँ इसको मेरा नाम भी पता, इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, ये तो मैं हूँ अल्लाह बहुत जबरदस्त कमाल हिकमत वाला, मैं अल्लाह हूँ, मैं आपसे खिताब कर रहा हूँ, क्या कैफियत होगी मूसा की। साथ ही अल्लाह ने पुकारा तो अहकामात डूस ऑर्डर वल की असाक, और अपना असर जमीन पर डाल दो, इसको नोट कीजिएगा, अल्लाह आपको पुकारे ये तो सबका दिल चाहता है, मेरा भी दिल चाहता है, पुकारेगा तो कोई काम देगा आपको, जैसे मुलाजिम को आका बुलाए तो क्या ऐसे तो नहीं बुला लेता, यही कह देगा पानी दे दो, तो खिताब के बाद हुक्म होता है। जो लोग कुरान पढ़ने आते हैं ना जहनी तौर पे वो तैयार होकर आए कि या अय्युहन्नास या अय्युल्लज़ीना आमनु के बाद अब अल्लाह हमसे कुछ तकाजे करेगा, कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा, वरना तो नौकरी चली जाएगी। और आप याद रखिए कि नौकरी पक्की कब होती है, जब मुलाजिम गुलाम आए तो आका उसको कहते भाई आज ये करना है, आज वो करना है, आज ये करना, खुश होते हैं ना मर्द कि आज गए और ये काम, और आप गए और मालिक ने कहा बैठे रहो इधर कोई काम नहीं है, इंतजार करते रहे एक दो घंटा, तशवीश होगी कोई गड़बड़ है, या तो मेरी जगह किसी और को डाल दिया या मैं ठीक नहीं करता, और एक दिन आपको वैसे ही बिठा दिया जाए और अगले दिन कहा जाए सॉरी आपके लिए कोई काम नहीं है, अच्छा लगेगा ले आप होना। तो अल्लाह उन्हीं लोगों पे काम डालता है जिनकी नौकरियां पक्की होती हैं, एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा, और यही आपकी जॉब को फिर अल्लाह के यहाँ पक्का कर देता है। लेकिन ऐसे वक्तों में जो भाग जाए, जो डर जाए, खौफ खा ले, हाय मेरा नाम तौबा करे, मुझे तो कोई कुछ ना कहे, तो मूसा तो नहीं भागे, अल्लाह ने कहा डाल दो। अच्छा मजे की बात देखिए यहाँ मूसा का ये कम अमल बताया नहीं, जैसे सूरह ताहा में था ना कि होना क्या चाहिए था, अल की असा के मूसा अपना असा जमीन पर डाल दो, तो जवाब में एक तो जुमला होता कि मूसा ने असा डाल दिया, नहीं है पलम मराहत अख्तज़, यानी हुक्म सुनने के बाद इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि ये कहा जाए कि डाल दिया, डाल दिया, पीछे भी बात आपको ये बताई थी मूसा अलैहिस्सलाम ने डाल दिया, अल्लाह ने उसका जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बात सुन के करता रहे खड़ा रहे, हाँ बस उसको डाल के देखा कि राहत अख्तज़, वो तो हिल रही थी, पीछे ये लफ्ज गुजर चुका, बात हो गई, हुज़्ज़ी लाइक सूरत मरियम में आपने हजरत मरियम के किस्से में पढ़ा, हुज़्ज़ी लाइक इस दरख्त को हिला तेरी गोद में आएंगी रोतब खजूरे, तो वो चश्म डला तो वो सांप बन गया, कान्ना जान गोया कि वो सांप है, जान क्या है, जिन, जिन होती है छुपी हुई चीज, तो वो सांप जो रूप धार लेता है, आप पता है कि सांपों के किस्म है जो छुप जाते हैं, होते हैं लेकिन ऐसे लगते हैं कि नहीं है, ये वही सांप था, पतला लंबा सांप, इसे आपको पता है सूरह शुरा में के तीन नाम है सोबान जान और हैया, और इस सांप में ये तीनों खूबियां थी। मूसा का हाल क्या हुआ, वल्लम उद्बिरम वलम युअक्किब, पीठ फेर के भागे और मुड़कर भी ना देखा, इंसान बशर बशरी तकाजे, लेकिन डाल दिया था, हुक्म मान लिया था। और याद रखिए जब अल्लाह के हुक्म पर मन पसंद चीजें छोड़ी जाती है तो शुरू में खौफ आता है, अंदेशे, हाय ये कारोबार छोड़ दिया तो खाएंगे कहां से, कर्जे कहां से उतरेंगे, हाय ये नहीं ये चीज निकाल दी तो बिजनेस ठप हो जाएगा, इसकी तो सहेली बहुत है, इसकी मदद होता है उस वक्त पे वो तहज़्ज़ू। मूसा का ऐसा हिला था, आज अल्लाह के हुक्म पर जब अपने कामों में से हम हराम की हम एजिश निकालते हैं तो बंदा खुद हिल जाता है, ज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा, लेकिन अल्लाह उसको थाम लेता है। या मूसा ला तख़फ़, ओ मूसा डोंट वरी, इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून, बेशक मेरे हजूर रसूल नहीं डरा करते। इसको नोट कीजिए, अल्लाह के हुक्म पर नाफरमानी की चीजें छोड़ने वाले डरते नहीं है, इल्ला मन ज़ुलिम। अब आप यहाँ नोट कीजिए कि इस जुमले की यहाँ क्या जरूरत थी, बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, बारीक सा। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदीन कब गए थे और क्यों गए थे, सब बोले आप, कत्ल हो गया था, उस मुल्क से निकल के दूसरे में चले गए, वापस चले गए, छुप गई बात, भूल गई। अब किधर आ रहे हैं, मसल सांप देखा, खौफ क्या आया, ओ मैंने वो कत्ल किया था, आज अल्लाह उसकी सजा में मुझे मारने लगा। गुना 10 साल पुराना भी हो जाए ना तो बंदे को उसका खौफ होता है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस खौफ से बेगुनाह करते हुए या उस खौफ से निकालते हुए कहा कि पुराने गुनाहों को नबूवत के रास्ते में हायल ना करो, इल्ला मन ज़लमा, जो हो चुका हो चुका, तुम्हारा कत्ल वो कत्ल नहीं था, वो तो कत्ल खता था, अमत नहीं था। सुम्मा बदला हुस्ना, फिर इसके बाद उसने बदल लिया बाद इन बुराई के बाद, फैनी गफूर रहीम, बस बेशक मैं बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। आप 10 साल ससुराल में रह के आए हैं, आपने कितनी नेकियां की, मैंने आपको इसके बाद नबूवत दे दी, तो फिक्र ना करो। क्या पता चला कि इंसान बड़े से बड़ी गलती कर चुका हो पिछली जिंदगी में, हराम गलतियां, डोंट वरी, इल्ला मन ज़लम, ज़ुल्म हुआ लेकिन अब बस सुम्मा बदला हुस्ना, हुसन के साथ बदलो। बड़े से बड़े गुनाहगार को भी इस्लाम मायूस नहीं करता, लिहाजा अल्लाह ताला की ये तसल्लियां बता रही हैं कि मेरे पे तवक्कुल करो। दीन का काम तवक्कुल के बगैर नामुमकिन है, कोशिश इंसान करता है, मदद अल्लाह की होती है, लेकिन हाथ पकड़कर नहीं करवाएगा, हिम्मत खुद करनी पड़ेगी। इसीलिए फरमाया वदखिल यदक फी जेबिक, और जरा दाखिल कर अपना हाथ अपने गिरेबान में। ये जो जेबिक है ना, जेब क्या होती है, ये जो जेब होती है पॉकेट, ये कहाँ होती है, मोमन सीने पे होती है ना, तो जेब सीने से, जियूब का लफ्ज आप पढ़ेंगे, वल यदरिब बिखुमरी हिन्ना अला जियूबी हिन्ना, सूरत अल अहज़ाब के अंत पे आता है, तो जियूब इसी से जमा है, तो जेब को जेब भी कहते हैं इसलिए कि वो सीने पे होती है अक्सर। तखरुजु बैदा, निकलेगी रोशन होकर। अब एक और थोड़ी सी आपको मुश्किल में डाल दूं, बैदा क्या है, मुअन्नस है, इसका जैसे अरबी जुबान में गिनती भी मुजक्कर मुअन्नस की होती है ना, इस तरह सिफात भी है, जैसे अबियद मुजक्कर सफेद और बैदा मुअन्नस है। मुअन्नस क्यों है जी, कोई बताएगा इधर के बैदा क्यों आया, यद की वजह से, यद के हाथ क्या होता है मुजक्कर के मुअन्नस, क्यों मुअन्नस होता है, बोले शाबाश सिंधी बोले, जिस्म के वो आजाद जो दो हो वो मुअन्नस होते हैं, तो यहाँ यद की वजह से बैदा आ गया मुअन्नस का। मिन गैरी सुइन, कोई बुराई नहीं है, यानी कोई बर्स नहीं है, कोई फुलबहरी नहीं हो गई, मुराद यह है कि वो शाइनी था, बुरा वाइट नहीं था कि धब्बा पड़ा हुआ लगे, लिहाजा तुम ये करो। पहला मौजा क्या था, सांप खौफ, इसमें क्या है चमक होप, तो दाई ये दीन को ये दोनों हथियार लेके चलना है। अबशिरु, खुशखबरियां भी दो और उनसे इंतजार भी करो। फिर दिस आयात निला फिरौन व कौमी, ये दो निशानियां फिरौन और उसकी कौम के लिए उन 9 निशानियों में से हैं जो मिलेंगी, कुल 9 थी, बाकी 9 कब 7 कब मिली बताइए, क्या भाई सिंधी से, सूरत अल अराफ, जब मूसा ने ये 2 निशानियां फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश कर दी, फिर भी ना माने, जादूगर मुसलमान हो गए फिर भी ना माने, अखीर जब हद पूरी हुई तो फिर अल्लाह की तरफ से क्या आई थी साथ जी, क्या हुई थी निशानियां, मेंढक बरसे, खून उन पर गिरा और उनको जुमे पड़ गई, वो सारी उसी की तरफ इशारा है। इन नौमकान कौमन फासिकीन, ये बड़े नाफरमान लोग हैं। खैर, मीटिंग कंप्लीट। टोटल अल्लाह ताला ने काम दे दिया, करना क्या है, जाके क्या लेके साथ जाना है, हो गया। अब मूसा किधर है, फिरौन के दरबार में। फलम मजा तुमाया तुना मुबसीरतन, जब वो इनके पास हमारी आंखें खोल देने वाली निशानियां लेकर आ गए, या जब आ गई इनके पास हमारी आंखें खोल देने वाली निशानियां, कालू हाज से हरमुबीन, तो उन्होंने कहा ये खुला जादू है। किन्होंने कहा, आपसे बोले, फिरौन और उसके साथियों ने। वजहदू बिहा, और उन्होंने शिद्दत से इनका इनकार किया। एक होता अनकार, युनकिरु इनकार, मुनकर, वो तो सिंपल इनकार, इजी गोइंग, लेकिन जहादू शिद्दत इनकार। आप अपने बच्चे को कहते हैं ये काम ना करो, वो नहीं करता, करो, वो नहीं करता, और एक शिद्दत से कहता है बिल्कुल नहीं करूंगा, तो जहादू इनकार। जबकि वस्तयकनत हा अनफुसुहुम, उनके दिल यकीन कर चुके थे। ये बताइए कि वस्तयकनत हा का रूट क्या होगा, आज के सबक में गुजरा, यूकिनून, जी शाबाश, वही लफ्ज है कि जबकि यकीन कर चुके थे, कायल हो चुके थे उनके दिल। वजह जुल्मम व उलूवन, जुल्म और बढ़ाई, बड़े बनने, बर्तरी हासिल करने, खुद को डोमिनेंट करने के जज्बे की वजह से। इन दो लफ्जों को हाईलाइट करें, ये है थीम इस पूरे किस्से का। बहुत सारे लोग हैं उनके दिल कायल हो जाते हैं कि ये सच है, लेकिन तबीयत में जुल्म और बड़ा बनना होता है। नतीजा क्या होता है कि वो फिर उसका इनकार कर देते हैं। हक के साथ जुल्म किया, और उलूफ क्या है, खुद को बड़ा समझा, तकबर किया। नतीजा क्या निकला कि वो उस चीज से दूर हो गए। अब देखिए इस फिक्रे में जुल्मन और उलूवन का ताल्लुक किस लफ्ज के साथ है, जहादू के साथ। बहुत अहम आयत है। अगरचे उन्होंने बज़ाहर इन तमाम निशानियों को जादू करार देकर मूसा को पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये इनकार सरासर नाफरमानी और सरकशी पर मबनी था। क्यों? क्योंकि इनके दिल ये मान चुके थे कि वाकई मूसा अल्लाह के रसूल हैं, और ये जो आदात दिखती हैं ये जादू नहीं है, ये तो मौजज़ा है। आम लोगों को शायद ना पता, लेकिन फिरौन जैसा अकलमंद शख्स जो इतनी बड़ी हुकूमत कर रहा था, उसको और उसके दरबारियों को ये पता चल गया था कि मूसा सच्चे हैं, लेकिन ना माना क्योंकि जुल्मन व उलूवन, ये दो चीजें बांध के रख रहे। देखिए हक के रास्ते की दो रुकावटें हैं, नफ्स परस्ती और मुफाद परस्ती। नफ्स परस्ती होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस, मेरी जात। हक के रास्ते पे जब कहीं मेरी जात पे चोट पड़ेगी तो मैं जहादू भी हा, दैट्स इट, खत्म। जबकि बस तई का न था, दिल तो मानता है लेकिन मैं नहीं अफोर्ड कर सकती इसको। और दूसरी मुफाद बरसती, मेरा जाती फायदा है तो इट्स गुड, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। साहबा को देख लीजिए, अपनी जात से ऊपर भर के दीन के काम किए उन्होंने अल्लाह के लिए। फिरौन और मूसा के जो साथी थे बाद में भी जो उनको मिले, उनके कामयाब ना होने की वजह यह थी जुल्मम व उलूबन। वहां बनी इसराइल के नाते से जुल्म का लफ्ज फिर शिर्क होगा, दिल से भी शिर्क खुर्चा नहीं गया था, और उलूबन बड़ा बनने का शौक था। फंजुर कई फकाना अकीबतुल मुफ्सिदीन, बस खूब खोल के देख लो आंखें, क्या अंजाम हुआ इन मुफ्सिदों का। हजरत मूसा का जो किस्सा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक हेडलाइन थी, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया। असल किस्सा दाऊद और सुलेमान का, हम उसके साथ फिर बार बार मूसा के किस्से को इंशाल्लाह टैली करेंगे। यहां तक सोचिए कि मैंने क्या सीखा। अब मैं नहीं बताती, कोई ऐसी बात सामने लाइए जो मैंने नहीं बोली तो मुझे खुशी होगी कि आपको खुद भी सीखना आ गया। कोई पॉइंट जिस पे आज बात नहीं हुई, पहले चले कभी हुई होगी, उसको शेयर कर दो। कोई भी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन पे लिखते हैं जी आप।
ये कभी आपको लगी कि आपकी कोई चीज अच्छी नहीं रहती है और आपकी कोई बहुत अच्छी होती है, और किसी चीज से अगर आपको डर लगे तो उसमें शायद खैर हो।
यानी बज़ाहर बुरी दिखने वाली चीजें, वो हालात जो हमें अच्छे नहीं लग रहे लेकिन उसमें खैर हो सकती है। ठीक है जी, आप इधर से। अल्लाह का हुक्म सुनो तो मान लो, बस उसका एक ही नसीब है, मान लो। ठीक है, और जी पीछे से आप नशीन। غرور نہیں کرنا, خود کو بڑا نہیں ماننا, اللہ کے آگے بھی چھوٹے, بندوں کے آگے بھی چھوٹے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں بڑی ہوں اندر سے کہ چھوٹی ہوں؟ اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جی ادھر سے ہما بتائیے. اس کا عملی اظہار کیسے ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیے شاید رشیدہ جی. دیکھیے ایک بات ہے, پتہ نہیں اللہ جانتا صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ لگتا ہی ہے بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہے. اللہ حالات میں ڈال ڈال کے اس کو دکھاتا ہے تو کیا. جیسے کبھی آپ کے پاس کوئی زیور لے اور کہ یہ دیکھو سونے کا نہیں, تو مجھے آپ کو تو نہیں پتا چلے گا نا, جیولر کو دیں گے, آپ دیکھیں وہ کبھی کبھی اس کو کھرچتے ہیں, کسی پتھر پہ رگڑتے ہیں, پھر کسی تیزاب میں ڈالتے ہیں, کبھی کسی دھات کے پاس لے جاتے ہیں, ان کو پتا چل جاتا ہے. اللہ ازمائشوں اور مشکلوں میں ڈالتا ہے. کسی کی بات یاد آ گئی کہ ابھی ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں کہ ہم یہ چیز سنبھال سکیں, تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ آپ کے اندر اب وہ خوبیاں لانا چاہتا ہے, اسی لیے آپ کو اس ازمائش میں ڈال رہا ہے. آن لائن سے ایک تو پڑھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ بریک ہے نماز اور کھانے کی. ٹاک واک ڈیلنگ, مشکل نیکیوں کے وقت بھی سب سے پتہ چلتا ہے کہ اندر اور باہر میں کتنا فرق ہے. سب سے بھی عام حالات میں نہیں پتہ چلتا. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے, دل سے مانے. ایکسٹریملی جوائے اینڈ ایکسٹریملی سیڈنس کین ایدر میک یو ٹو میک یو اور بریک یو. وہ کسی کی ایک بڑی اچھی کوٹیشن آج کل چل رہی ہے اکثر ہی نیٹ پہ کہ قرآن کیا ہے, اٹ ہیلز دا بروکن ہارٹ اینڈ اٹ, بولیے اگلا کیا, قرآن ٹوٹے ہوئے دلوں کا علاج کرتا ہے, اینڈ اٹ سافٹن دا ہارڈ ہارٹس. یعنی قرآن ٹوٹے ہوئے دلوں کا علاج کرتا ہے, اس کو جوڑ دیتا ہے, اور جو سخت دل ہے نا ان کو نرم کر دیتا ہے. اب یہ ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں. ایک بس آخری پڑھوں گی ادھر. یہ کہتی ہیں کہ مائی ایکسپیرینس آل دیز ایئرز آئی ڈیڈنٹ کم ٹو قرآن بیکاز آئی تھاٹ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو, بٹ آئی اسٹل ہیڈ دا ارج ٹو ڈو بیٹر. الحمد للہ آئی ایم ان کلاس ٹوڈے. سمجھ آئے؟ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے. دیکھ لیجئے 12:55 ہے, ان شاء اللہ 1:15 ٹوٹل 20 منٹس میں کھانا پانی جو کچھ بھی جمع کرتے ہیں نماز پہلے, پھر اس کے بعد آگے سے, کیونکہ اصل آج وہ سٹوری آپ سمجھ جائیں گے تو پھر یہ پوری صورت نمل تو اسی پہ چلے گی. جزاک اللہ خیر. میرا ماں پہ جان لگا دیجئے. اسی اذان کے دوران آپ لوگ سنتیں ادا کر لیں پلیز.